नमस्कार भारत, तारीख 2 अगस्त दिन रविवार, मैं विनीत खरे। दो मीडिया संस्थानों की जांच के बाद धावकों पर बड़े स्तर पर डोपिंग के आरोप। पश्चिम बंगाल में भारी बारिश से लाखों लोग प्रभावित, 40 से ज्यादा की मौत। जम्मू में एम्स की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई। बिहार में मैगी के बाद 5 और नूडल ब्रांड्स पर रोक।
सभी 6 प्रोडक्ट्स में ऐसा पाया गया है कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट की मात्रा नूडल्स में पाई गई है, जो कि ड्राई नूडल्स या पास्ता में अलाउड नहीं।
मिलिएगा बिहार के दूसरे दशरथ मांझी रामचंद्र दास से।
तोड़ते थे तो कहता था कि पागल हो गया है, दिन रात आकर के घटिया में लगल रहता है। ठीक है, हम पागले हैं।
और बीबीसी न्यूज मेकर्स में मुलाकात मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले सामाजिक कार्यकर्ता अंशु गुप्ता से। लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। मीडिया रिपोर्टों में संदिग्ध डोपिंग का मामला उठाए जाने के बाद एथलेटिक्स नए विवाद में घिर गई है। ब्रितानिया अखबार द संडे टाइम्स और जर्मनी के प्रसारक एआरडी ने एक विसिल ब्लोअर से विश्व एथलेटिक्स की नियामन संस्था आईएएफ की ओर से कराए गए हजारों डोपिंग परीक्षणों का डाटा जारी किए जाने के बाद जाँच की है। नतीजे देखने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि 2001 से 2012 ओलंपिक खेलों की एथलेटिक्स स्पर्धाओं में एक तिहाई मेडल उन एथलीटों ने जीते जिनके नतीजे संदिग्ध थे। इराकी कुर्दिस्तान की सरकार ने अलगाववादी तुर्क कुर्द बल पीकेके से अपने नागरिक इलाकों से हटने के लिए कहा है, ताकि आम नागरिकों को जानमाल का नुकसान न हो। इराक के भीतर तुर्की के हवाई हमलों में आम नागरिकों की मौत की रिपोर्टों के बाद कुर्दिस्तान ने तुर्की के हवाई हमलों की भी आलोचना की है। पीकेके के प्रवक्ता ने बीबीसी से कहा है कि इराकी कुर्दिस्तान के नेता मसूद बरजानी को पीकेके पर तुर्की के हवाई हमलों के बारे में पता है और उन्होंने इसकी सहमति दी है। इराकी कुर्दों ने इसका खंडन किया है। उनका कहना है कि उनके नेता को हवाई हमले हो जाने के बाद ही इस बारे में जानकारी दी गई। तुर्की की सरकारी समाचार सेवा के मुताबिक अब तक किए गए हवाई हमलों में 260 से अधिक पीकेके के लड़ाके मारे जा चुके हैं। तुर्की और कई पश्चिमी देश अलगाववादी कुर्द बल पीकेके को चरमपंथी समूह मानते हैं। इराक में इलाकाई कुर्द सरकार के विदेश मंत्री मुस्तफा फलाह ने तुर्की के हवाई हमलों की आलोचना करते हुए कहा, हमने पीकेके से आबादी वाले इलाके छोड़ने के लिए कहा है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे लोग इसकी कीमत चुकाएं। आज जो हुआ वो एक त्रासदी है। एक दर्जन से अधिक लोग मारे गए हैं और दर्जनों घायल हुए हैं, घर तबाह हो गए हैं। इसलिए ही हम नहीं चाहते कि कुर्दिस्तान के लोग इस संघर्ष की कीमत चुकाएं। हजारों इजरायली नागरिकों ने प्रदर्शन कर चरमपंथी यहूदी बाशिंदों के खिलाफ और सख्त कार्रवाई करने का आह्वान किया है। तेल अवीव में हुए प्रदर्शनों में पश्चिमी तट पर आगजनी के हमले में मारे गए एक 1.5 साल के फलस्तीनी बच्चे के परिवार के प्रति संवेदना भी प्रकट की गई। माना जा रहा है कि शुक्रवार को हुए इस हमले के पीछे कट्टरपंथी यहूदियों का हाथ है। दूसरी ओर गुरुवार को समलैंगिक अधिकार रैली पर हुए हमले के विरोध में भी एक प्रदर्शन रैली निकाली गई। एक कट्टरपंथी यहूदी ने चाकू से हमला कर परेड में शामिल 6 लोगों को घायल कर दिया था। अमेरिका में नागरिक अधिकार कार्यकर्ता सेल्मा से अलबामा होते हुए वाशिंगटन डीसी तक की 40 दिनों की रैली की शुरुआत कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो हाल ही के दिनों में अफ्रीकी मूल के अमरीकी नागरिकों पर हमलों में बढ़ोतरी के खिलाफ ये रैली निकाल रहे हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा में नमस्कार भारत, आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी सुन रहे हैं। मैं हूं विनीत खरे। ब्रिटेन के अखबार संडे टाइम्स और जर्मनी की प्रसारक संस्था ARD WRD ने करीब 5,000 धावकों के खून के 12,000 नमूनों की जांच के नतीजे हासिल करने के बाद बड़े स्तर पर संदिग्ध डोपिंग के आरोप लगाए हैं। इन ताज़ा आरोपों से एथलेटिक्स की दुनिया को एक बड़े संकट का सामना है। अखबार लिखता है कि सबूतों को देखकर ऐसा लगता है और ऐसे सवाल खड़े होते हैं कि दुनिया के बड़े टूर्नामेंट जैसे ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप में किस तरह धावकों ने कथित धोखेबाजी की। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्टों का सार सुनिए दिलनवाज पाशा से। माफ कीजिए, जी अच्छा, हमें बताया जा रहा है कुछ तकनीकी कारणों से ये रिपोर्ट हम आपको नहीं सुनवा पा रहे हैं। हमारी कोशिश होगी थोड़ी देर में हम ये रिपोर्ट सुनवाएं। आगे हम बढ़ते हैं। नेपाल में आए भूकंप को 100 दिन पूरे हो गए हैं। 25 अप्रैल को 7.8 की तीव्रता से आए भूकंप में 9,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। मैंने थोड़ी देर पहले बीबीसी नेपाली सेवा के सुरेंद्र फोयाल से बात की और मैंने उनसे पूछा कि 100 दिनों के बाद, भूकंप के 100 दिनों के बाद नेपाल आखिर कहाँ है।
नेपाल अभी भी भूकंप प्रभावित अवस्था में ही है। पुनर्निर्माण का चरण शुरू हो गया है मगर पुनर्निर्माण बहुत धीमे गति में आगे बढ़ रहा है। इसकी वजह से लोग खुश नहीं है। अब ये भारी बारिश का जो मानसून सीजन है, ये इसके आने के बाद भूकंप पीड़ितों का घाव में मलम पट्टी तो नहीं, उनका दुख और दर्द और ज्यादा बढ़ गया है। पानी का समस्या है, बाढ़ का समस्या है, भूस्खलन का समस्या है, ये और जटिल बना रहा है। दो तरह के लोग है, एक लाखों लोग जो घर बार बेघर हुए है, उनके लिए घर की व्यवस्था नहीं है अभी तक। वो अभी भी त्रिपाल और टीन के हट में, झुपड़ में रात गुजार रहे हैं। और दूसरे लोग हैं जो घर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। मगर प्रॉब्लम ये है कि सरकार ने सुरक्षित घरों का नक्शा जो स्वीकृत करने का वादा किया था वो अभी तक नहीं हुआ है। राहत मिल गया है लोगों को मगर यहाँ पीड़ित लोग भी है और नकली पीड़ित लोग भी बहुत है। इसकी वजह से समस्याएं आई है। नेपाल धीरे धीरे धीमी गति में आगे बढ़ रहा है। नेपाल के भूकंप पीड़ित सामान्य अवस्था में वापस आने के लिए संघर्ष ही कर रहे हैं 100 दिन के बाद।
नेपाल के भूकंप को 100 दिन हुए पूरे। ये थे काठमांडू से बीबीसी नेपाली सेवा के सुरेंद्र फोयाल। और अब हम आपको दिलनवाज पाशा की रिपोर्ट सुनवाते हैं कि किस तरह जो दावा किया है ब्रिटेन के अखबार संडे टाइम्स और जर्मनी की प्रसारक संस्था ARDWRD ने, और उन्होंने 5,000 दावकों के खून के 12,000 नमूनों को हासिल किया है और उन पर संदिग्ध डोपिंग के आरोप लगाए हैं। आइए सुनते रिपोर्ट।
अखबार ने दावा किया है कि सबूत बताते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रतियोगिताओं में भी एथलीटों ने बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की है। मीडिया समूहों ने डोपिंग पर दुनिया के सबसे चर्चित विशेषज्ञों में शामिल वैज्ञानिक रॉबिन पेरिसोटो और माइकल एशेंडन से लीक किए गए रक्त जांच नमूनों की जांच करवाई है। एक विसिल ब्लोअर ने IAAF की ओर से कराए गए ब्लड टेस्ट सैंपलों को इन दोनों मीडिया समूहों को दिया है। डाटा को देखने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि 2001 से 2012 के बीच हुए ओलंपिक खेलों की स्पर्धाओं में एक तिहाई मेडल उन एथलीटों ने जीते जिनके परीक्षणों के नतीजे संदिग्ध थे। विशेषज्ञों का कहना है कि 800 से अधिक एथलीटों के ब्लड टेस्ट नतीजे शक पैदा करते हैं। ब्रिटेन का एक शीर्ष एथलीट भी डोपिंग के आरोपों में घिरा है। विशेषज्ञों का कहना है कि 2012 में लंदन में हुए ओलंपिक खेलों में 10 पदक उन एथलीटों ने जीते हैं जिनके टेस्ट नतीजे संदिग्ध थे। कई फाइनल मुकाबलों में तीसरे नंबर पर आए हर एक एथलीट के टेस्ट नतीजे संदिग्ध रहे थे। ब्रितानी एथलीट मो फाराह और जमैका के धावक उसैन बोल्ट के ब्लड टेस्ट नतीजे संदिग्ध नहीं हैं। जो तथ्य सामने आए हैं वो डोपिंग के पक्के सबूत नहीं हैं, लेकिन उनसे ये सवाल जरूर उठ रहे हैं कि क्या IAAF डोपिंग को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठा रही है। अगले महीने ही बीजिंग में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप शुरू होने वाली है और ऐसे में IIAF पर डोपिंग रोकने के प्रयासों पर सवाल उठना तय है। IIAF ने जारी किए गए डाटा की सत्यता पर सवाल नहीं उठाए हैं। संस्था ने संडे टाइम्स से कहा है कि वह डोपिंग को रोकने के लिए हमेशा प्रयासरत रही है और इसके लिए नई तकनीकों और उन्नत तरीकों का इस्तेमाल करती रही है।
एथलेटिक्स की दुनिया को बड़े संकट का सामना। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्ट पेश कर रहे थे दिलनवाज पाशा। पश्चिम बंगाल में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई और पिछले एक हफ्ते में 41 लोग मारे गए हैं। बाढ़ जैसी स्थिति से 12 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित बताए जा रहे हैं। इसके कारण सामान्य जनजीवन पर भी काफी असर पड़ा है। कोलकाता से स्थानीय पत्रकार प्रभाकर मणि तिवारी।
हालात तो बहुत खराब है। कल सारे दिन सुबह लोग घर से नहीं निकल पाए, आम जनजीवन पूरा अस्त व्यस्त, और कोलकाता के ज्यादातर इलाके कल सुबह से अब तक पानी में डूबे हुए हैं और बारिश भी रुक रुक के हो रही है, कभी तेज कभी धीमी। कोमेन तूफान तो कमजोर हो गया है, लेकिन बंगाल की खाड़ी पर जो निम्न दबाव बन गया है उसकी वजह से काफी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कहा शुक्रवार की दोपहर तक 24 घंटों में ही लगभग 145 मिलीमीटर बारिश हो गई है और अगले 48 घंटों में भी बारिश होनी। सामान्य जनजीवन तो कहा जा सकता है लगभग ठप है। शुक्रवार को भी काफी बारिश हुई, फिर शनिवार को भी सुबह से ही लोग घरों से नहीं निकल पाए, स्कूल कॉलेज तो बंद रहे और गैर सरकारी दफ्तरों में भी मौजूदगी काफी कम रही। ट्रेनें भी लंबी दूरी की कई ट्रेनें रद्द कर दी गई थी और कई ट्रेनें दूसरे मार्गों से चलाई गई और बसें टैक्सियां भी सड़कों पर नहीं। ज्यादातर इलाके घुटने से लेकर कमर तक पानी में डूबे हैं, अब भी डूबे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार की शाम को राज्य सचिवालय में एक उच्च स्तरीय बैठक की और स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कई इलाकों का दौरा भी किया तो उनका कहना था कि 965 राहत शिविर खोले गए हैं, उनमें 1,00,000 लोग रह रहे हैं फिलहाल और वहाँ पानी के 5,00,000 पानी के पाउच भेजे गए हैं और दूसरी खाद्य सामग्री भेजी जा रही है। इसके अलावा कोई 125 चिकित्सा शिविर वहाँ खोले गए हैं ताकि लोगों का इलाज और पानी के कारण होने वाली बीमारियां इन सब के लिए डॉक्टर वगैरह भेजे गए हैं वहाँ। और उनका कहना है कि इससे करीब 2,50,000 घरों को नुकसान पहुंचा है और 2,00,000 हेक्टेयर से ज्यादा फसलें नष्ट हो गई हैं। वैसे तो ममता का कहना था कि 12 जिले हमारे प्रभावित हैं, लेकिन जो खबर है उसके मुताबिक मेदिनीपुर के दोनों जिले, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, मुर्शिदाबाद और बांकुड़ा, ये 4 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इसके अलावा दक्षिण 24 परगना है जो कलकत्ता से सटा इलाका है, वहां भी बाढ़ में कई गांव डूब गए हैं पानी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बाढ़ के कारण मरने वाले लोगों को 4,00,000 रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि आगे चलकर घर बनाने में भी उनकी सहायता की जाएगी और उनसे जब पूछा गया कि क्या आपने इस हालात से निपटने के लिए केंद्र से भी कोई मदद मांगी है तो उन्होंने कहा हमने केंद्र से कोई मदद नहीं मांगी है, हम अपने बूते सब कुछ करेंगे। उनका सवाल था कि दार्जिलिंग में जो हादसा हुआ, भूस्खलन हुआ, उसमें केंद्र ने टीम भेजी थी फिर भी एक पैसे की सहायता नहीं दी।
कोलकाता से स्थानीय पत्रकार प्रभाकर मणि तिवारी। जम्मू में एम्स के गठन की मांग कर रहे मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कल हिंसक हो गया और पुलिस को 3 जगहों पर आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल करना पड़ा। इस बीच जिला प्रशासन ने जम्मू जिले में धारा 144 लागू कर दी। हमारे साथी सुशीला सिंह ने जम्मू फोन कर बीनू जोशी से पूरा ब्यौरा मांगा।
और देर रात तक जब प्रशासन और एम्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के बीच बैठक हुई जिसमें प्रशासन ने जम्मू में एम्स सैंक्शन करवाने की बात कही, परंतु कोऑर्डिनेशन कमेटी इसको एक छलावा कहते हुए उन्होंने कहा कि आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। तो इसका ये है कि 14 जून को भी जब ये आंदोलन चल रहा था तो राज्य के उप मुख्यमंत्री जो भाजपा के सीनियर नेता है प्रोफेसर निर्मल सिंह, उन्होंने कोऑर्डिनेशन कमेटी को लिखित रूप में दिया था कि 20 जुलाई तक जम्मू में एम्स खुलने को मंजूरी मिल जाएगी, परंतु ना ऐसा ना होने पर जो है ये कोऑर्डिनेशन कमेटी ने फिर से आंदोलन जो है ये शुरू कर दिया है। जो एम्स का जो ये आंदोलन है इसका अंतिम दिन है, जो 72 घंटे का बंद का कॉल दी थी, तो ये जो आंदोलन है एम्स कोऑर्डिनेशन कमेटी चला रही है जिसमें 30 से अधिक संगठन है जिनमें व्यापारिक भी है, बार एसोसिएशन भी है, कुछ सामाजिक संगठन है, ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन है और इसके अलावा कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पैंथर्स पार्टी जो राजनीतिक दल हैं इनका भी समर्थन इनको है।
जब उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ये कह चुके हैं कि वो एम्स के गठन को लेकर केंद्र सरकार से मंजूरी लेकर आएंगे तो अड़चन कहाँ पर आ रही है?
देखिए इसका जो बैकग्राउंड हम देखें कि इस वर्ष फरवरी में जब केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपना बजट का भाषण दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर को एक एम्स सैंक्शन किया गया है। इसके उपरांत जब राज्य सरकार में पीडीपी और भाजपा का गठबंधन सरकार का गठन होना था तो एक एजेंडा फॉर अलायंस बना जो कोई सरकार चलाने के लिए न्यूनतम साझा कार्यक्रम था, उसमें क्या हुआ कि एम्स को कश्मीर घाटी में स्थानांतरित कर दिया गया। तो यहां से सारा विरोध शुरू हुआ जिसके लिए जम्मू ने विरोध शुरू कर दिया कि एम्स जो है वो मुख्यतः जम्मू के लिए मंजूर हुआ था जिसको भाजपा ने पीडीपी के आगे घुटने टेकते हुए कश्मीर घाटी को स्थानांतरित करके दे दिया है। कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वो कह रही है कि ना सिर्फ एम्स पे बल्कि कई और मुद्दों पे जम्मू के लोगों के साथ भाजपा ने धोखा किया है। जैसे कि अब एक चीज हम और वो आगे ला रहे हैं कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसरण जिस पर भाजपा ने चुप्पी साधी हुई है, इस पर भाजपा काफी देर से लड़ाई लड़ रही थी कि जो निर्वाचन क्षेत्र है उनका परिसीमन होना चाहिए। इसमें यह है कि मुस्लिम बहुल कश्मीर घाटी में केंद्रित जो दल हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनका शायद उनको शक है कि जो हिंदू बहुल जम्मू जो है उसमें सीटें विधानसभा की बढ़ सकती हैं। संविधान की धारा 370 जिसको भाजपा शुरू से कह रही थी कि इसे हटना चाहिए, उस पर भी चुप्पी साधी हुई है। तो आगे छोटे छोटे मुद्दे जैसे बिजली, पानी, शहरी विकास, उद्योग आदि को भी कह रहे हैं कि इनकी अनदेखी हो रही है। अब इसका ये है कि दिसंबर 2014 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, तो पहली बार जम्मू कश्मीर में 87 सीटों में से भाजपा को 25 सीटें मिली थी, और ये सभी सीटें हिंदू बहुल जम्मू क्षेत्र में मिली थी जहां विधानसभा की 37 सीटें हैं। और उस समय वो इसलिए मिली थी कि चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी ने यहां रैलियां करके कहा था कि जम्मू के साथ भेदभाव खत्म होगा और चौतरफा विकास होगा।
जम्मू से ये थी पत्रकार बीनू जोशी। बिहार में मैगी के बाद 5 और कंपनियों के 11 नूडल ब्रांड्स पर रोक लगा दी गई है। 1 सितंबर तक इनकी खरीद, बिक्री, दुकानों में भंडारण और प्रचार प्रसार पर रोक रहेगी। पटना से मनीष शांडिल्य।
अगर आप फास्ट फूड में नूडल्स पसंद करते हो तो आपकी परेशानियां बढ़ने वाली हैं। बिहार में 5 और कंपनियों के 11 नूडल्स पर रोक लगाई गई है। आज से 1 महीने यानी कि 1 सितंबर तक के लिए इनके खरीद बिक्री, खुदरा दुकानों में भंडारण और प्रचार प्रसार पर रोक रहेगी। इसके पहले बिहार ने भी 5 जून को मैगी नूडल्स पर रोक लगाया था। राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त और स्वास्थ्य सचिव आनंद किशोर ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन प्रतिबंधों की घोषणा की।
कि जो जांच की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार मूलतः 6 प्रकार के प्रोडक्ट्स, नॉर, मस्त मसाला, सूप नूडल्स विथ टेस्ट मेकर, फूडल्स, मल्टीग्रेन आला मसाला, चिंग्स मंचूरियन इंस्टेंट नूडल्स, चिंग्स सेक्रेट वेज हक्का नूडल्स, निशान टॉप रैमन करी नूडल्स और सनफिस्ट यिप्पी नूडल्स मैजिक मसाला, इन सभी 6 प्रोडक्ट्स में ऐसा पाया गया है कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट की मात्रा नूडल्स में पाई गई है जो कि ड्राई नूडल्स या पास्ता में अलाउड नहीं है।
बिहार सरकार ने इन नूडल्स की जांच वाणिज्य और उद्योग भारतीय परिसंघ यानी फिक्की के दिल्ली स्थित प्रयोगशाला में कराई थी। जिन 5 कंपनियों के नूडल्स पर आज से रोक रहेगी उनमें शामिल हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर, ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर, कैपिटल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो निस्सिन फूड्स और ITC लिमिटेड। राज्य सरकार ने इन कंपनियों से बाजार में मौजूद प्रतिबंधित नूडल्स को वापस मंगाने को भी कहा है। हालांकि कंपनियों को रोक की अवधि के दौरान इन नूडल्स को गोदामों में रखने की इजाजत होगी। माना जाता है कि नूडल्स अब खास तौर पर शहरों में खानपान का अहम हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे में इस रोक के कारण लोगों की परेशानियां और चिंता बढ़ेगी। जैसा कि शिक्षिका कामना कुमारी बताती हैं,
तो ये बैन तो आज की आ गया, लेकिन हम लोगों के बच्चे तो बहुत दिनों से ये नूडल्स का सेवन तो कर ही रहे हैं, खा ही रहे हैं, तो चिंता तो इस बात की है कि उनके शरीर पर उसका क्या दुष्प्रभाव पड़ा होगा। परेशानी थोड़ी बहुत तो परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि जनरली अभी वर्किंग लेडी जो हैं उनके लिए बच्चों का खाना तो मायने रखता ही है। अब खाना नहीं बना हुआ है और बच्चों को भूख लगी है, तो 5 मिनट्स वाले नूडल्स जो हैं वो अगर बैन हो जाते हैं, 2 मिनट्स वाले नूडल, तो थोड़ी परेशानी तो हो ही जाएगी।
ये नूडल्स खासकर युवाओं की पसंद बन चुके हैं। ऐसे में इस रोग के असर के बारे में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की छात्रा मोनालिसा बताती हैं।
स्कूल, कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी हमेशा लौटते थे तो शाम में नाश्ते में तो सबसे पहला यही सोचते थे, नहीं रहता है तो मैगी लाओ दुकान से खा लो, सबसे पहला दिमाग में वही आता था। ये होगा कि अब सोचना पड़ेगा, अब कौन सा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो वो रहता था नूडल्स तो हमेशा हमेशा वही फर्स्ट चॉइस रहता।
लेकिन यह भी माना जा रहा है कि यह रोक बिहार के लोगों के लिए एक मौका भी होगा कि वे नूडल्स जैसे फास्ट फूड पर अपनी निर्भरता कम करें, खत्म करें और कहीं ज्यादा पोषक और स्वास्थ्य के लिए अधिक फायदेमंद माने जाने वाले सत्तू, चूड़ा, मुरही, भुंजा जैसे देसी फास्ट फूड की ओर लौटें। ये देसी फास्ट फूड आज भी बिहार में हर जगह आसानी से मिल जाते हैं। मनीष शांडिल, पटना।
और अब मिलिए बिहार के दूसरे दशरथ मांझी से। इनका नाम है रामचंद्र दास, जो गया जिले के अतरी प्रखंड के हैं। इन्होंने 15 साल तक पहाड़ काटकर रास्ता बनाया जिससे पड़ोस के गांव में रहने वाले लोगों का जीवन आसान हो गया। एक रिपोर्ट के साथ पटना से नीरज सिन्हा।
समाज में जब कोई शख्स अपने जुनून से कोई मिसाल कायम करता है तो उसका अनुसरण करने वाले भी सामने आते हैं। माउंटेन मैन दशरथ मांझी की राह अपनाने वाला उनके पड़ोसी प्रखंड अतरी में सामने आया है। बिहार की राजधानी पटना से करीब 150 किलोमीटर दक्षिण में स्थित गया जिला के पहाड़ों से घिरे अतरी प्रखंड के केवटी गांव के निवासी रामचंद्र दास ने 15 साल की कड़ी मेहनत से पहाड़ काटकर 10 मीटर लंबी और 4 मीटर चौड़ी सड़क बना दी है। 50 साल पार कर चुके रामचंद्र यादव ने कबीर पंथ अपना लिया है। अब वे रामचंद्र दास हैं। वे बताते हैं कि यहाँ रास्ता नहीं था। दशरथ बाबा की प्रेरणा से 1993 में हमने भी पहाड़ काटना शुरू किया।
कबीरपंथी से जुड़े हुए बाबा दशरथ दास कबीरपंथी थे। हम भी कबीरपंथी का अथी लिए हैं और उन्हीं को प्रेरणा से जो भी काम किया है उन्हीं को प्रेरणा से हमने काम किए हैं। बहुत लोग अथी करते थे, जब तोड़ते थे तो कहता था कि पागल हो गया है, दिन रात ता करके घटिया में लगल रहता है। ठीक है, हम पागले हैं। इसी रूप से काम करते 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 जैसे जैसे टूटल जाओ वैसे वैसे हमरो मनोबल आगे बढ़ल जाओ। इसी रूप से हम फोड़ते गए, फूटते फूटते 93 से हमने काम लगाए थे। 2007 में दशरथ बाबा सिद्धांत हो गए और 8 में इसको एकदम प्योर हम फैलन दे दिए।
काम 2008 में पूरा हुआ लेकिन बाबा पूरा काम को नहीं देख सके। लेकिन इस सवाल पर कि आखिर आपने पहाड़ काटा क्यों, वे बताते हैं कि
हमारे यहाँ रोड नहीं था, पहले आने जाने में लोग के बहुत दिक्कत। बाबा से प्रेरणा लिए, कहे कि तोड़िए और नहे कहीं कि तू ही तोड़ो, तो हम तोड़ना काम लगा दिए। काम जब लगाए तो काम लगाते हुए लगल हम रह गए। जिंदगी गुजारने के लिए क्या करेंगे, यहाँ दुखरा मजूरी हम लोग के 10-5 बीघा जिम्मेदार के बाल बच्चा है साहब, कि बाप दादा के अर्जल है कि उसी से हम लोग खाना पीना करते हैं, तो देह कहाँ पटकेंगे, आपका हर जोतेंगे, किसी का मजदूरी करेंगे तबे न भोजन मिलेगा, बिना भोजन के तो ये आत्मा मानेगा नहीं।
रामचंद्र दास ने अपने आसपास के गांव के लोगों के रोजमर्रा की परेशानियों को ध्यान में रखा और पहाड़ काटकर रास्ता निकाल दिया। इसका समर्थन गांव की चिंता देवी भी करती हैं। वे कहती हैं कि
घाट काटने फूटे से फायदा यही हुआ कि सबके बेटी बहू घाट के ऊपटी मैंने गाड़ी या रिक्शा बैठे जाल थे, अब आप दुआरी पर गाड़ी आ जा है, ट्रक आ जा है, जितना मोटर गाड़ी सब है से सब पार हो जा है, आदमी के जाय ने न बना ले, आदमी जाल थी तो दोनों दाने पथला पकड़ के पार हो गाल थे, ऐसे अब सब दुआरी पर गाड़ी आ जाए, सब गाड़ी कोई रोक ठोक ना आई गाड़ी घाट से।
दृढ़ निश्चयता का पर्याय रामचंद्र दास को कहा जा सकता है, लेकिन इन्होंने जो काम किया है इसको लेकर भविष्य का कोई ब्लूप्रिंट न तो गांव वालों ने तैयार किया है और न ही जिला प्रशासन के पास इससे जुड़ी आगे की कोई योजना है। नीरज सहाय, पटना।
रिपोर्ट थी नीरज सहाय की, न कि नीरज सिन्हा जैसे कि मैंने पहले बोला। तो बहरहाल अब चलते हैं दिलनवाज पाशा के पास, आज के अखबारों की सुर्खियां जानने। दिलनवाज
जी, कल भारत के गृह मंत्रालय ने इस्लामिक स्टेट से निपटने की रणनीति पर चर्चा की थी और आज इससे जुड़ी खबर लगभग हर अखबार के पहले पन्ने पर है। दैनिक जागरण लिखता है आईएस से निपटने की तैयारी और अमर उजाला का शीर्षक है आईएस की आहट से भारत सतर्क। साथ ही दिल्ली में कल लग्जरी टैक्स 5% बढ़ा दिया गया है, यानी होटल और बार का बिल महंगा हो सकता है और ये खबर दैनिक जागरण के पहले पन्ने पर है। दैनिक भास्कर ने झारखंड की पतरातू घाटी की एक बेहद दिलकश तस्वीर पहले पन्ने पर प्रकाशित की है और एक और रिपोर्ट के मुताबिक भास्कर की व्हाट्सएप के मुकाबले 5% SMS कर रहे हैं लोग, यानी जितने मैसेज व्हाट्सएप पे किए जाते हैं उसके मुकाबले सिर्फ अब 5% मैसेज ही किए जाते हैं, लेकिन फिर भी 170 करोड़ मैसेज रोज किए जाते हैं।
काफी रोचक
जी। और भगवा आतंकवाद के मुद्दे पर केंद्र सरकार के बयान के बाद तकरार बढ़ गई है और इसी पर दैनिक जनसत्ता का शीर्षक है भगवा आतंकवाद पर तकरार। 20 किलोमीटर तक एक हृदय को ले जाया गया प्रत्यारोपण के लिए और ये दिलकश खबर भी आज के अखबारों के पहले पन्ने पर है, कैसे 16 मिनट के अंदर जो है 20 किलोमीटर का फासला तय किया गया। द इंडियन एक्सप्रेस अखबार की पहले पन्ने पर प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश के जज पर लगे यौन शोषण के आरोपों में को साबित करने के लिए सबूत नहीं है, ये जांच पैनल का कहना है। और आपको याद होगा अमरोहा जहाँ का मैं रहने वाला हूँ वहाँ की एक हत्याकांड काफी चर्चा में आया था। शबनम और उसके प्रेमी ने अपने शबनम के परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी थी। अब शबनम को अपने बेटे के लिए नया घर मिल गया है। उसने अपने एक
काफी चर्चा हुई थी इस
जी 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 की। जी उन्होंने वो अपने बेटे को अपने एक पूर्व कॉलेज सहपाठी को सौंप रही हैं और उन्होंने उनसे आग्रह किया है कि वो उसके बच्चे को कभी उसके गांव ना लेके जाएं और उसकी कहानी उनको ना सुनाएं। ये मामला बहुत चर्चा में रहा था और याकूब मेनन की फांसी पर सुप्रीम कोर्ट के एक अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया है। अनूप सुरेंद्रन जो सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी रजिस्ट्रार थे और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और फेसबुक पोस्ट पर अपने लिखा कि जिस तरह वो मैं फांसी के खिलाफ हूं और इस फैसले को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं। अमर उजाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान से अपनी मां का इलाज कराने के लिए आई एक युवती के साथ बलात्कार की कोशिश की गई और दुखी होकर उनका परिवार वापस अफगानिस्तान लौट गया।
शुक्रिया दिलनवाज आपका। और आप बीबीसी न्यूज मेकर्स में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले सामाजिक कार्यकर्ता अंशु गुप्ता से। उनसे बात की वैभव दीवान ने।
हम इस देश की एक ऑनेस्ट मिडिल क्लास फैमिली से उठे हुए हैं और खानदान इंजीनियर्स का है। इंजीनियर बने नहीं, मास कॉम कर लिया। जर्नलिज्म में जॉब करने की इच्छा नहीं थी वो भी नहीं करी। कॉर्पोरेट नौकरी करी, उसके बाद एक समझिए कीड़ा आया और वो कीड़ा ये था कि भाई ये कपड़े की कमी है कहीं ना कहीं और इसमें कोई सिस्टम नहीं है। या तो ये एक डिज़ास्टर रिलीफ का मटेरियल है या फिर चैरिटी का काम धंधा होता है। इससे पूरे वर्ल्ड वाइड होता है, हिंदुस्तान में नहीं बाहर भी सब ऐसे ही होता है। यही जाना तो वो उस पर काम करने की ठानी। तो मेरा अपना कोई वजूद नहीं है। मैं आज जो भी हूँ या जो भी ये अवार्ड मिला है या इससे पहले कुछ भी मिला है गूंज का है और बहुत सारे इसके टीम के लोगों का है, मेरे परिवार का है और बहुत सारे वॉलंटियर्स का है।
गूंज एक एनजीओ है, ये करती क्या है?
हम लोगों ने आज से कुछ साल पहले, लगभग 16 साल पहले, एक बहुत छोटी सी बात उठाई थी कि आप 3 बुनियादी ज़रूरत बोलते हैं तो कहते हैं रोटी कपड़ा मकान। और फिर जब आप कभी भी कोई पॉलिसी बनाते हैं बड़ी बड़ी, कुछ भी हो, 100-150 विषय होते हैं आज की डेट में, डोमेस्टिक वायलेंस से ग्लोबल वार्मिंग तक, लेकिन आपको क्लोथिंग कभी उसमें लिखा नहीं होता। जबकि वो आप ये मान के चलते हैं कि वो बुनियादी ज़रूरत है, रोटी कपड़ा मकान जब आप कहते हैं। तो हमने सिर्फ ये सवाल उठाया कि ऐसा कैसे हो गया कि आपको कहीं पर कपड़े की ज़रूरत है, ये तभी याद आता है जब वहाँ पर बाढ़ आ जाए। और इसका सोल्यूशन कितना सिंपल सा है कि आप उसको चैरिटी से हटा दीजिए, आप उसको बक्सों से निकाल दीजिए, आप किसी डिज़ास्टर की वेट मत कीजिए और उसको दीजिए। तो अब तो हमने तो 67 कपड़ों से शुरू किया था 98-99 में, अभी हम लोग करीब ऑलमोस्ट 2000 टन के आसपास हर साल हैंडल कर रहे हैं और कपड़ा उसका सिर्फ एक पार्ट है।
जो राशि भी तो कुछ पैसे भी तो मिलते हैं, उसका भी कुछ प्लान कर रखा है कि आपने उसको कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करना है या फिर उसको कैसे सोचना है?
दो सपने हैं उसको लेके भी। एक तो जो बहुत सारे छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हैं जो आज के युवा ले रहे हैं और बहुत अच्छे अलग अलग तरीक़ों के ले रहे हैं और ये सब उसी दौर से इनमें से बहुत सारे गुजरते हैं जिसमें आज से 16 साल पहले या 10 साल पहले तक शायद हम गुजर रहे थे कि आपको यदि ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करना है तो घर का सामान बेचना होगा। तो हम भी उस दौर से गुजरे हैं। तो मैं चाहूँगा कि यदि छोटा छोटा सा कोई राशि यदि मैं उनको दे सकूँ वो
तो फंड करना चाहते हैं। हाँ, मतलब जो सोशल एंटरप्रेन्योर बनना चाहे उनको फंड करना चाहते हैं।
फंड तो मैं क्या बोलूँगा, माना कोई
सपोर्ट।
हाँ ठीक, छोटी सी सपोर्ट है। कौन जाने कि 10 लाख रुपए भी हों या 20 लाख भी हों तो वो शायद 20 इनिशिएटिव इस देश में नए खड़े कर दें, पता नहीं लगता। और दूसरा, यदि थोड़ा सा पैसा बचा तो मेरे मम्मी पापा दोनों ही नहीं रहे और बहुत दिनों से तमन्ना है कि उनका एजुकेशन पर बहुत था और शायद उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। कुछ एजुकेशन पे, कुछ एक स्कॉलरशिप पे कुछ ऐसा शुरू कर दिया जाए जो वो जो ऊपर बैठे हैं सितारों की तरह कहीं देख रहे होंगे, शायद उनको सुकून मिलेगा।
ये थे अंशु गुप्ता, उनसे बात की थी वैभव दीवान ने। और चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
मीडिया रिपोर्टों में संदिग्ध डोपिंग का मामला उठाए जाने के बाद एथलेटिक्स पर सवाल उठ रहे हैं। इराकी कुर्दिस्तान की सरकार ने अलगाववादी तुर्क कुर्द बल पीकेके से अपने नागरिक इलाकों से हटने के लिए कहा है ताकि आम नागरिकों को जानमाल का नुकसान न हो। हजारों इजरायली नागरिकों ने प्रदर्शन कर चरमपंथी यहूदी बाशिंदों के खिलाफ और सख्त कार्रवाई करने का आह्वान किया है। अमरीका में नागरिक अधिकार कार्यकर्ता सेल्मा से अलबामा होते हुए वॉशिंगटन DC तक 40 दिनों की रैली की शुरुआत कर रहे हैं। पेरू के अधिकारियों का कहना है कि शाइनिंग पाथ विद्रोहियों के कब्जे से 15 और लोगों को छुड़ा लिया गया है। कनाडा में साइकिल पर टॉपलेस जा रही तीन बहनों को रोके जाने के विरोध में सैकड़ों लोग वाटरलू शहर की सड़कों पर नंगे होकर रैली निकाल रहे हैं। बीबीसी समाचार।
शुक्रिया दिलनवाज पाशा और शुक्रिया राजेश चौहान का भी। इसी के साथ मुझे विनीत खरे को दीजिए अनुमति। श्रोताओं से हमारी दोबारा यानी मुलाकात होगी, अगली मुलाकात होगी एक घंटे बाद यानी भारतीय समय अनुसार सुबह 8 बजे।